राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावनवा। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशो। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशो। यमुना तीरवन चा यमुना तीर वन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशो। हाँ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशो। यमुना तीर वन चारी। यमुना तीर वन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Giridhari Radha जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाल 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 श्री भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंद ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम स्कंध सात अध्याय चौदह श्लोक क्रमांक तीन शृण्वन् भगवतो भीष्णम् अवतार कथामृतम् शद्दानो यथा कालम् उपशान्त जनावृत। श्लोक में श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर एक बात कहते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा तात्पर्य है परंतु एक पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी अपनी कलम से लिख रहे हैं कि यह मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से गृहस्थ लोग प्रतिदिन गधों के समान कठिन श्रम करते हैं। करते हैं नहीं, फिर से पढ़ता हूं। यह मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए मिला है, यह हम नहीं कह रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। यह मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए मिला है, लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से गृहस्थ लोग प्रतिदिन गधों के समान कठिन श्रम करते हैं। वे प्रातः काल उठते हैं, देखिए दिनचर्या बता रहे हैं, ये गधे गृहस्थ दोनों की राशि एक है। वे प्रातः काल उठते हैं और जीविका उपार्जन के लिए 100 मील तक की यात्रा करते हैं। यहां से चर्च गेट कितना हो सकता है, 100 मील तो नहीं है, लेकिन खैर यात्रा करते हैं। विशेषतया पाश्चात्य देशों में मैंने देखा है कि लोग जीविका उपार्जन के लिए कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने के लिए प्रातः 5 बजे जग जाते हैं। ऑफिस में जाने के लिए बहुत जल्दी उठते हैं, 5 बजे जग जाते हैं। कलकत्ता तथा बंबई में भी लोग ऐसा ही करते हैं। वे अपने अपने कार्यालय या फैक्ट्री में कठिन श्रम करते हैं और घर लौटते समय 3-4 घंटे आतायात में बिताते हैं। सत्य है, कार्यालय ऑफिस में जाते हैं और 3-4 घंटे तो ट्रेन में ही बीत जाते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तब से 10 बजे, तब जब वे घर पर आते हैं तब वे 10 बजे सो जाते हैं और पुनः अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने के लिए प्रातः काल जग जाते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार के कठिन श्रम को सूकरों तथा मल भक्षियों का जीवन कहा गया है। भगवान ऋषभ देव कहते हैं, नायम देहो देह भाजा निर्लोके कष्टान कामान अहस्त विट भुजाम। हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य जीवन सुअरों की तरह मल खाने वाले सुअरों की तरह बिताने के लिए नहीं मिला है। उसी बात को प्रभुपाद जी यहां पर कह रहे हैं। ये उन समस्त जीवों में से जिन्होंने इस जगत में भौतिक देह धारण करना स्वीकार किया है और जिसे यह मनुष्य का शरीर मिला है, उसे केवल इंद्र तृप्ति के लिए ही अहर्निश कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह इंद्र तृप्ति तो कुकरों तथा मल भक्षी सुकरों को भी सुलभ है। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता सुनने के लिए समय निकाले, आप लोगों की तरह। यही वैदिक संस्कृति है। मनुष्य को जीविका उपार्जन के लिए अधिक से अधिक 8 घंटे कार्य करना चाहिए। कितने घंटे? हम कितने घंटे करते हैं? और कुछ लोग तो नाइट ड्यूटी करते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे तक अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और दोपहर के बाद या संध्या समय गृहस्थ भक्तों की संगति में कृष्ण के अवतारों एवं उनके कार्यकलापों के विषय में सुनना चाहिए और इस तरह धीरे धीरे माया के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। किंतु गृहस्थ कृष्ण कथा सुनने के लिए समय नहीं निकालकर अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में कठिन श्रम करने के बाद होटलों में, क्लबों में इत्यादि अलग अलग जगह पर जाने के लिए समय निकालते हैं, जहां वे कृष्ण कथा न सुनकर असुरों तथा भक्तों की राजनीतिक गतिविधियों को सुनकर प्रसन्न होते हैं और मैथुन, शराब, स्त्री तथा मांस का भोग करके समय का अपव्यय करते हैं। यह गृहस्थ जीवन न होकर आसुरी जीवन होता है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैले हुए अपने केंद्रों में ऐसे पतित तथा निंदनीय व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत कुछ लिखे हैं, लेकिन हमारे जैसे गृहस्थ के लिए यह बात लग रही थी, इसलिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो आइए इस श्लोक पर हम विचार विमर्श करने से पहले मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदा साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दारुण बिंब फल दरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती वितन्वता च सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत्किलास्यत समे ऋषीणा ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर्महतभी ययिमा पुरो विभू निर्मायशेते यदमूष पूरुष भुंतेर्गुणानशो रशोडशात्मक सोलंक श्रिष्ट भगवान वचांसि में हरे कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति शुक्रवार ये इस कार्यक्रम मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। 15 दिनों के बाद हम पुनः यहाँ पर मिले हैं। आप सबकी कृपा से हमने हमारे गुरु महाराज के मुखारविंद से 7 दिन भागवत कथा का आस्वादन किया है। वास्तव में शुद्ध भक्त के मुख से भागवत कथा सुनना यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए कई शास्त्रों में कहा गया है, सप्ताहम श्रवणम तेन सर्वेभ्यो अपि अधिकम कृतम। सबसे अधिक, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ यदि किसी साधन को माना गया है तो वह श्रवणम। और श्रवण में भी श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना यह सबसे बड़ा जीवन का लाभ है। और अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण करता है तो कहते हैं, साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मो अयम इरिति। कलयुग में जितने जितने दोष है, श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर कलयुग के दोष को मिटाया जा सकता है। और ये लिखने वाले कह रहे हैं, वास्तव में कलयुग में सबसे बड़ा मुख्य धर्म यदि कोई है तो है भागवत कथा सुनना। कथा में रुचि उत्पन्न हो जाना यही है हमारे जीवन का लाभ। तो ऐसी कथा, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम प्रति शुक्रवार को यहां पर श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के दरमियान, इस कथा में हम गृहस्थ धर्म का वर्णन कर रहे हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लिए थे, अपने धाम से जब इस पृथ्वी पर पधारे थे, उस समय की यह बात है। राजसूय यज्ञ करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर अपने गुरु श्री नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं कि मेरे जैसा गृह मुड्ढ धी, मेरे जैसा गृह में आसक्त व्यक्ति किस प्रकार भगवान की प्राप्ति कर सकता है, कृपया करके वह रास्ता मुझे बताइए। युधिष्ठिर महाराज अपने को एक बहुत ही निम्न श्रेणी में रख रहे हैं और निम्न श्रेणी में रखते हुए यह प्रश्न पूछ रहे हैं। यद्यपि देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज गृह मुड्ढधि नहीं है, वे इतने निम्न श्रेणी में नहीं है, वे तो भगवान के परम भक्त हैं। आप कल्पना कीजिए, जो भगवान युधिष्ठिर महाराज के साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध में, ऐसी विपत्ति में युधिष्ठिर महाराज पांडव इत्यादि का साथ दिए, वे युधिष्ठिर महाराज भगवान के कितने बड़े भक्त होंगे। लेकिन इतने बड़े भक्त होने के बाद भी ये कह रहे हैं कि मेरे जैसा आसक्त व्यक्ति के लिए मुझे उपदेश दीजिए। तो वास्तव में यह प्रश्न युधिष्ठिर महाराज के लिए नहीं है, यह प्रश्न हम सब के लिए है। वास्तव में यह हमारी स्थिति है कि हम गृहस्थ जीवन में फंसे हुए हैं। तो इस फंसे हुए गृहस्थ जीवन में हम किस प्रकार भगवान की प्राप्ति कर सके, यह उपदेश दीजिए, यह युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा, नारद मुनि ने इनका उत्तर देना प्रारंभ किया। नारद मुनि कहते हैं, गृहेषु अवस्थितो राजन क्रिया कुर्वन यथोचिता वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनि। यह आपने पिछले प्रवचन में सुना कि किस प्रकार गृहस्थ में स्थित रहकर गृहस्थ के समस्त कर्तव्य करते हुए गृहस्थ के कर्तव्य करने के बाद उनके जो फल है वे भगवान को अर्पण करने चाहिए। और भगवान को अपने फल अर्पण करते करते उपासित महामुनि, महान लोगों का संग करना चाहिए। पिछले प्रवचन में नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को यह कहा कि सबसे पहली बात कि गृहस्थ में स्थित रहना है, गृहस्थ के कर्तव्य निर्वाह करना है, तत्पश्चात हम जो कर्म करते हैं उनके फल को भगवान को अर्पण करना है, और तीसरी बात महान लोगों के संग में बैठना है, महान लोगों की संगति करनी है। तो वास्तव में महान लोग कौन है इस संसार में? इस संसार में सबसे महान कृष्ण के भक्त है, तो कृष्ण के भक्त की संगति करनी चाहिए गृहस्थ को। ये नारद मुनि गृहस्थ के लिए बता रहे हैं। उपासित महामुनि, महामुनियों के पास जाकर, कृष्ण के भक्तों के पास जाकर बैठना चाहिए। और यह सत्य बात है, नीति शास्त्र में चाणक्य पंडित कहते हैं कि जीवन में यदि प्रगति करना चाहते हो तो अपने से महान लोगों का संग करो। यदि अपने से महान लोगों का संग नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में पतन निश्चित है। अपने से महान लोगों का संग करना चाहिए। फिर महान लोगों के साथ संग करने में महान लोग गाली भी दे तो ठीक है। एक जगह तो एक भक्त कहते हैं, जो महान नहीं है, जो दूषित लोग हैं, असत लोग हैं, असत लोगों की सैकड़ों वाह वाह से अच्छा है महान लोगों की गाली सुनना। अक्सर हमारे जीवन में यह होता है, जो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं वे महान नहीं है, परंतु प्रशंसा करते हैं तो हम उनके साथ रहने लगते हैं और महान लोगों का संग छोड़ देते हैं। परंतु ये कहते हैं कि महान व्यक्ति यदि गाली भी दे रहा हो तो उसके साथ रहना चाहिए। वो दृष्टांत देते हैं, जैसे घोड़े की लात खा लेना अच्छा है गधे के ऊपर बैठने से। अब आप बताइए, गधे के ऊपर बैठना अच्छा है या घोड़े की लात खा लेना अच्छा है? गधे के ऊपर बैठने से अच्छा है घोड़े की लात खा ले। तो यही है, महापुरुष की गाली खा लेना एक बार मंजूर है, परंतु महान लोगों के साथ ही रहना चाहिए यदि जीवन में प्रगति करनी। और महान लोग कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त के साथ रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी की इस कलयुग में असीम कृपा है कि कृष्ण के भक्त अक्सर मिल ही जाते हैं। यदि आप चन्नी रोड से ट्रेन से आते हैं तो कई भक्त लोग आते जाते हैं, पकड़ लीजिए और उपासित तो उनके बाजू में बैठ जाइए, जीवन में प्रगति होगी, नहीं तो पतन निश्चित। तो नारद मुनि ने कहा उपासित महामुनि, महान लोगों का संग करना चाहिए। तो महान लोगों का, हरे कृष्ण, महान लोगों का संग करने से, कृष्ण के भक्त का संग करने से क्या प्राप्त होगा, ये अगले श्लोक में, आज के श्लोक में बता रहे हैं। इस बात को श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को भी बताते हैं। वे कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। जब भक्त गण आपस में मिलते हैं तो हे मां, मेरे मुझ कृष्ण के पराक्रम की चर्चा होती है, और भवंति रीत कर्ण रसायणा कथा, और उस कथा से ऐसा अमृत प्राप्त होता है जिस अमृत से हृदय भी प्रसन्न हो जाता है और कान भी प्रसन्न हो जाता है। और इतना ही नहीं, यह कथा यदि सुनते रहे तो सुनते सुनते श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिषति, अनुक्रम में श्रद्धा रति और भक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है केवल भक्तों के बाजू में बैठने से। उपासित, उनके बाजू में बैठ जाइए, कृष्ण प्रेम मिल सकता है। आज हम सब भक्ति में जुड़े हैं भक्त के बाजू में बैठने से या उसके साथ बातचीत करने से। तो आज के श्लोक में कहते हैं कि भक्त का संग करके क्या करना चाहिए। क्या भक्त का संग का अर्थ यह नहीं है भक्त को चाट लेना चाहिए? भक्त के संग का अर्थ है, कहते हैं, अभीक्ष्णम अवतार कथामृतम। जब भक्त का संग होता है तो भक्त जो होते हैं वे कृष्ण की कथा ही करते हैं। तो भक्त के संग में आकर कृष्ण कथा सुननी चाहिए। तो प्रश्न होता है कृष्ण कथा कितनी बार सुननी चाहिए? कलयुग के लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। तब नारद मुनि को कहना पड़ा, भाई कृष्ण कथा बारंबार सुननी चाहिए, इसलिए कहते हैं अभीक्ष्णम। अभीक्ष्णम का अर्थ श्रीपाद श्रीधर स्वामी बारंबार करते हैं। भगवान की कथा गीता और भागवत एक बार पढ़ लेंगे और प्रभु जी हो गया, हमने पढ़ लिया। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अभीक्ष्णम, ये बारंबार बारंबार पढ़ते रहना चाहिए। यह भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं, बारंबार पढ़ने से क्या होगा? तो सबसे पहले बारंबार पढ़ने से, एक ही कथा को बारंबार सुनने से या बारंबार पढ़ने से वह हृदयंगम हो जाता है, याद रह जाता है। अक्सर सब लोग प्रवचन सुनकर प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी आप इतना कुछ बोलते हैं परंतु याद नहीं रहता है। परंतु एक बार सुन लेने से याद नहीं रहता है, एक ही चीज को बारंबार बारंबार सुनने के बाद जब अभ्यास हो जाता है तब याद रहता है। इसलिए अभीक्ष्णम, बारंबार एक ही चीज बारंबार सुनते रहनी चाहिए। एक बार काउंसिल में मैं कथा बता रहा था, एक वोपदेव नाम के एक बालक थे जिसका नाम प्रभुपाद जी भागवत के प्रथम श्लोक के परपट में लिखते हैं। खैर वे कुछ अलग चीज के लिए लिख रहे हैं, परंतु वोपदेव नाम का एक लड़का था और स्कूल में पढ़ता था, परंतु इतना पढ़ने में वीक था कि एक एक क्लास में पांच पांच साल करता था। उनके साथ पढ़ने वाले कॉलेज में चले जाते थे, स्कूल को छोड़कर चले जाते थे, परंतु ये तो वही क्लास में बैठा रहता था। और उस गांव के किसी भी लोगों को यदि पूछा जाए कि आप इस लड़के को जानते हो, तो गांव के सभी लड़के कहते थे हाँ ये मेरे क्लास में था। लगभग गांव के सभी लड़कों के साथ ये पढ़ चुका था। पढ़ने में इतना माहिर नहीं था। तो एक एक क्लास में तीन तीन चार चार पांच पांच साल होने के बाद उस स्कूल के जो प्रिंसिपल अध्यक्ष होते हैं, सब लोगों ने मीटिंग की कि इस लड़के को हमारी स्कूल में रखकर हम हमारी स्कूल का नाम बिगाड़ रहे हैं। ये तो मूर्ख है ही, परंतु हमारी स्कूल का नाम बिगड़ रहा है, इसका कुछ किया जाए। तब सब लोगों ने, अध्यक्ष ने मीटिंग करके उनके रजिस्टर में रेड लाइन दे दी कि आज से इस लड़के को स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, अब बहुत हो गया। तब उस वोपदेव को लिविंग सर्टिफिकेट दे दिया और कह दिया कल से स्कूल में मत आना। तो अपना लिविंग सर्टिफिकेट लेकर वो वोपदेव इतना दुखी हुआ ये घर पर नहीं गया। और मन में यही प्रश्न उठा कि क्यों मुझे कुछ याद नहीं रहता है, जैसे हमें भी प्रश्न होता है क्यों याद नहीं रहता। अक्सर धनेश प्रभु हमें पूछते हैं, प्रभु जी ये श्लोक याद करने का मुझे मत बताओ। तो वोपदेव मन ही मन में यही अपने आप को प्रश्न पूछ रहा था, क्यों याद नहीं रहता है। तो वे घर पे न जाकर उस गांव के एक कुएं के बाजू में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जाकर बैठा और अपने सर्टिफिकेट को देखकर बस यही सोच रहा था क्यों याद नहीं रहता है। तब यह देखते देखते उनकी नजर उस कुएं के पास गई। और आप देखते हो गांव में जो कुआं होता है, कुएं से जब पानी निकालना होता है तो बाल्टी के साथ एक रस्सी बांधी होती है,
और सूरज उस रस्सी को खींचकर कुएं से पानी निकालते हैं। लेकिन ये बहुत पहले की घटना थी, अभी तो फिलहाल गांव में सब लोग एक चक्कर लगा दिए हैं, गोल टायर जैसा, उसके ऊपर रस्सी को घसीट कर खींचते हैं। लेकिन पहले के जमाने में यह चक्कर वक्कर नहीं था। वैसे ही कुएं की जो दीवार होती है, कुएं के आजू बाजू में जो पत्थर होते हैं, उस पत्थर से ही रस्सी को घींच घींच कर पानी निकाला जाता था। तो वे जिस कुएं को देख रहा था, उस कुएं के ऊपर जो पत्थर था, वो पत्थर पानी निकालते निकालते वह रस्सी के साथ, पत्थर के साथ वह रस्सी घिस घिस कर वह पत्थर का दो टुकड़ा हो गया था। तब उस वोपदेव ने मन में सोचा कि देखो, यह रस्सी से यदि पत्थर को काटा जा सकता है, रस्सी से यदि पत्थर को काटा जा सकता है, तो मेरा दिमाग पत्थर जितना तो मजबूत नहीं है। वे समझ गया कि रस्सी से पत्थर को काटा जा सकता है, परंतु बार बार अभ्यास करने के बाद। वैसे देखा जाए तो पत्थर को लेकर रस्सी को 2 मिनट में आप काट सकते हो, परंतु वही रस्सी पत्थर को काट सकती है जब बार बार उसको घसीटा जाए। यह वोपदेव अपने बुद्धि में यह बिठा दिया कि बार बार यदि एक चीज का अभ्यास किया जाए तो वह चीज याद रह सकती। और यह उपदेश उस कुएं से लिया और पढ़ाई लिखाई जो भौतिक पढ़ाई थी वह छोड़ दी और उन्होंने तुरंत श्रीमद् भागवतम हाथ में लिया और एक एक श्लोक का अभ्यास करते 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 श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक उन्होंने याद कर लिए। जिस बालक को स्कूल से निकाल दिया था, उस बालक ने 18,000 श्लोक भागवत की याद कर लिए। ये केवल भागवत नहीं, भगवत गीता और भी कई सारे शास्त्र बिल्कुल बाय हार्ट कर लिए। ये किताब लेकर हमारी तरफ बैठने की आवश्यकता नहीं थी। और इसका प्रमाण यह है कि कुछ सालों पहले जब मुसलमान की मोगल सेना यहां पर आई तो सारे वेद उन्होंने जला दिए, उनके साथ साथ यह भागवतम की मूल लिपि जो थी वह भी जला दी। तब इस भारत में प्रश्न उठा, जो बड़े बड़े भक्त थे उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतम ही कलयुग में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करा सकता है, भगवान की प्राप्ति करा सकता है, परंतु यह श्रीमद् भागवतम की जो मूल लिपि व्यासदेव के द्वारा थी यह तो जल गई, अब क्या किया जाए। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ कहां से लाया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठा। तब किसी ने कहा कि वोपदेव नाम का एक बालक है, उसे श्रीमद् भागवतम के सभी श्लोक याद है। तो ये वोपदेव के पास गए और वहां जाकर वोपदेव ने सारे श्लोक कहे और श्रीमद् भागवतम के श्लोक लिखे गए और पुनः श्रीमद् भागवतम की प्रिंटिंग। तो तात्पर्य यह है कि एक ही चीज को बारंबार पढ़ना, उसे अभ्यास कहा जाता है, और अभ्यास के द्वारा किसी चीज को हम याद रख सकते हैं। इसलिए नारद मुनि यहां पर कह रहे हैं अभीष्णम, बारंबार कृष्ण कथा सुननी चाहिए। यह है बारंबार सुनने का पहला लाभ। और जैसे जैसे हम बारंबार सुनते रहेंगे, वैसे वैसे वह बातें हमें याद रह जाएगी, और जैसे वह कथा हमें याद रहेगी, उस कथा को हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं। और मुख्य कारण नारद मुनि कह रहे हैं कि बारंबार इस कथा को क्यों सुनना चाहिए, तब नारद मुनि कहते हैं अमृतम कथा। चूंकि यह कथा श्रीमद् भागवतम की जो कथा है यह अमृत के समान है। आपने सुना होगा श्रीमद् भागवतम के 8th स्कंद में समुद्र मंथन हुआ। यह समुद्र मंथन देव और दानवों के द्वारा, देवताओं द्वारा और असुरों द्वारा हुआ, परंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह समुद्र मंथन भगवान अजित, भगवान विष्णु के द्वारा हुआ था। भगवान विष्णु ही देवताओं के शरीर में शक्ति के रूप में, असुरों के शरीर में, और वे स्वयं मंदार पर्वत के ऊपर बैठे थे और स्वयं वासुकी नाग में भी निंद्रा दे दिए थे। वास्तव में समुद्र मंथन भगवान विष्णु ने किया था। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन किया और उस समुद्र मंथन से जो अमृत निकला वे भगवान विष्णु ने देवताओं को पिलाया। परंतु समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत पीकर भी देवतागण अमृत नहीं बने। देवताओं के पास जो अमृत है वे अमृत पीकर व्यक्ति मृत्यु से नहीं बच सकता है, उस अमृत से जीवन बढ़ा सकते हैं, स्वस्थ बन सकते हैं, निरोग बन सकते हैं, परंतु मृत्यु से नहीं बच सकते। परंतु वही भगवान विष्णु इस कलयुग में व्यास देव के रूप में आए और जैसे भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन किया था वैसे भगवान व्यास देव ने सभी वेद शास्त्र और उपनिषदों का मंथन करके श्रीमद् भागवतम रूपी ग्रंथ को बाहर निकाला और इस श्रीमद् भागवतम रूपी महा अमृत को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पिलाया और सुखदेव गोस्वामी ने वह अमृत पिया और उस अमृत को इस संसार के जीवों को सर्विस करके सबको बांट दिया। तो दो अमृत, एक भगवान विष्णु के द्वारा समुद्र मंथन से निकला और एक व्यास देव जी के द्वारा सभी वेद और शास्त्रों का मंथन करके ये भागवत अमृत निकला। ये दोनों अमृत में जमीन और आसमान का अंतर है। स्वर्ग का अमृत पीकर व्यक्ति मृत्यु से नहीं बच सकता है, परंतु भागवत कथा रूपी अमृत का यदि कोई पान कर लेता है तो वह जन्म जन्मांतर के मृत्यु के चक्कर से बच सकता है। तो ये श्रीमद् भागवतम में भगवान की जो कथा है ये अमृत के समान है। और यदि देखा जाए तो अमृत के दो गुण होते हैं, अमृत टेस्ट में बहुत अच्छा होता है और वे पीने से व्यक्ति इसका नाश नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार भागवत कथा, भगवान की जो कथा है वास्तव में उनका टेस्ट बहुत अच्छा है, मधुर है, सुनने में आनंद है और उसके नाश की दृष्टि से देखेंगे तो भगवान की कथा नित्य है, उसका नाश नहीं होता है। और नित्य की बात छोड़ दीजिए, नव यौवनम च, वे नित्य नवीन बनी रहती है। भगवान की कथा यदि हम सुनते हैं तो नित्य पल पल घड़ी घड़ी में हमें नया कुछ जानने मिलता है। यद्यपि देखा जाए तो यह कथा सबसे पुरानी है, इतिहासम पुरातनम, सबसे पुराना इतिहास, पुरानी कथा है, परंतु वह कथा नित्य नवीन लगती। आज इस संसार में रोज सुबह हमारे घर पर न्यूज़पेपर आता है, न्यू का अर्थ होता है नवीन और एस का अर्थ है फुल स्टॉप, उसको न्यूज, ज्यादा न्यूज है। तो वास्तव में देखा जाए तो वे न्यूज न्यूज नहीं है, ओल्ड है। और ये न्यूज मान लीजिए आज व्यक्ति कल का न्यूज सुनना नहीं चाहेगा, चार पांच दिन पहले का न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं चाहेगा, परंतु भगवान की कथा हजारों हजारों सालों से लोग कहते आए हैं और लोग सुनते आए हैं, फिर भी पुरानी नहीं हुई है। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सबसे पुराण पुरुष है, उनसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, परंतु नव यौवनम च, आज भी वे 16 साल के नव यौवन के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार भगवान की कथा जो है वे अमृतम, अमृत के समान है। तो इस अमृत को बारंबार बारंबार पीते रहना चाहिए। फिर भी कुछ लोग पूछते हैं बारंबार भी कितनी बार। तो हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, वास्तव में ये बारंबार जितना हो सके उतना पीना चाहिए। और एक बात जो उन्होंने बताई थी मैंने मेरे जीवन में उसको धारण किया है, ये बात उन्होंने खड़िया में पिछले साल बताई थी। वे कह रहे थे कि भागवत कथा, भगवान की कथा को बारंबार जीवन में सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। और यदि संभव हो, यदि जीवन में पर्याप्त धन हो, तो जीवन में केवल कथा ही सुननी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। और यदि पर्याप्त धन नहीं है, कमाने की आवश्यकता है, तो 4-5 घंटे या प्रभुपाद जी के अनुसार 8 घंटे काम करके जो समय बचता है, उस समय में केवल कथा ही सुनना चाहिए, क्योंकि कथा से ही कृष्ण में प्रीति उत्पन्न होगी। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरण रति जो चहे, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति करना यदि कोई चाहते हैं, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना कोई चाहते हैं, तो कहते हैं, रामचरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा भरो श्रवण पुट का। भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न करना चाहते हैं तो भगवान की कथा भाव सहित हमारे कान से सुननी चाहिए। तो नारद मुनि ने कहा, अभीक्ष्णम बारंबार कथामृतम, कथा रूपी अमृत को बारंबार सुनना चाहिए। अब प्रश्न होता है, ठीक है हम बारंबार सुनेंगे क्योंकि वे अमृत हैं, परंतु क्या बारंबार सुनना चाहिए? यहां पर नारद मुनि ने स्पष्ट कहा है कि भगवान की अवतार की कथा ही बारंबार सुननी चाहिए। शुणवन शुणवन भगवतो भीष्णम अवतार कथा अमृतम, भगवान श्री कृष्ण की कथा ही सुननी चाहिए। और दुनिया का जो कचरा है यह सब नहीं सुनना चाहिए। संसार में लोग देखते हैं बहुत कुछ अलग अलग वस्तुएं सुन पढ़ते हैं और सुनते हैं। जब अक्सर हम ट्रेन में जाते हैं तो कुछ लोगों के पास इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं और होता कुछ नहीं है, कान यहां से वहां घुमा फिरा कर काल्पनिक घटना होती है, उससे केवल दिमाग बिगड़ता है और टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। सुनना है तो केवल अवतार कथा, नारद मुनि कहते हैं, क्योंकि कथा तो सबको करना है। इस संसार में सब लोग कथा करते हैं और कथा सुनते हैं, एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक कथा करते रहते हैं। बच्चा सुबह से लेकर बोलना शुरू करता है कि स्कूल में जाना है, ये करना है, वो करना है। जो पत्नी होती है वे भी सुबह से लेकर क्या खाना है पीना है, ये नहीं लाए वो नहीं लाए, पति होते हैं वे भी बोलते रहते हैं। सब लोग इस संसार में कथा करते रहते हैं, परंतु अगर अपने मुख से कही हुई कथा कृष्ण विषयक नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई नहीं है, तो वह कथा मृत्यु के द्वार पर खड़ी कर देगी, नरक में पहुंचा सकती। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, जैसे मेंढक होते हैं वे भी कथा करते हैं बारिश की ऋतु में, ड्राउ 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 करते रहते हैं खेत में, परंतु वे मूर्ख यह नहीं जानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं उससे स्वर्ग को आमंत्रण दे रहे हैं। और वास्तव में स्वर्ग जो होता है वे मेंढक को खा जाता है, और अक्सर सर्प मेंढक को ढूंढता रहता है कहां है कहां है, और सर्प ढूंढ नहीं सकता है मेंढक को, परंतु ये मूर्ख बोलते रहते हैं, ड्राव ड्राव करते रहते हैं, सर्प उसकी आवाज से उसको पहचान लेते हैं और गप से खा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार के लोग कृष्ण की कथा बोलने के अलावा, कृष्ण की कथा नहीं कहते हैं, कृष्ण की कथा नहीं सुनते हैं, दुनिया की बातें करते रहते हैं, परंतु ये मूर्ख नहीं जानते हैं कि क्रूर काल बहुत मजबूत है, कब ये खा लेगा और कब इस जीवन को मिटा देगा, इसका कोई भरोसा नहीं। तो कथा तो निश्चित रूप से करनी है, परंतु अवतार कथा, नारद मुनि कहते हैं कि अवतार, कृष्ण के अवतार की कथा होनी चाहिए। और अवतार की कथा भी श्रद्धा के साथ होनी चाहिए, इसलिए वे आगे कहते हैं शुद्ध धानो। कुछ लोग भगवान की कथा सुनते हैं परंतु सुनकर बस अपनी बुद्धि से तोलते हैं, क्या भगवान ने गोवर्धन उठाया होगा। अब कल से भगवान उठाएंगे श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर में गोवर्धन को। तो ये 7 साल का बालक 7 दिन 7 रात केवल कानी उंगली पर ये उठाया होगा, नहीं विश्वास करते। ये 3 दिन का बालक क्या पुतना को मारा होगा। सुनते हैं कथा परंतु श्रद्धा नहीं है, तो बिना श्रद्धा के भी यदि कोई, क्योंकि यह प्रवचन सुनकर कोई व्यक्ति कथा सुनने चला गया परंतु श्रद्धा नहीं है, तो नारद मुनि कहते हैं बिना श्रद्धा के यह पूरा फल नहीं देगा। इसलिए नारद मुनि ने साथ कह दिया अवतार कथा तो सुनना है, बारंबार सुनना है, परंतु श्रद्धाना श्रद्धा के साथ। बिना श्रद्धा के यदि हम कथा सुनते हैं तो इसका पूरा फल नहीं मिलता है। अब आपको कथा क्या बताऊं, बहुत बड़ी कथा है परंतु धुंधुकारी के प्रसंग में, गोकर्ण और धुंधुकारी के प्रसंग में आप लोगों ने सुना ही होगा कि कई लोगों ने कथा सुनी थी। जब गोकर्ण जी कथा करने बैठे तब हजारों लोग उस कथा को सुनने के लिए बैठे थे और उस लोगों के साथ एक प्रेत आत्मा भी कथा सुन रहा था। जब 7 दिन की कथा समाप्त हुई तब वह प्रेत जो था वे डायरेक्ट चतुर्भुज रूप में होकर भगवान के धाम में चला गया, और मनुष्य योनि में जो बैठे थे उनमें से कोई भगवान के धाम में नहीं गया। जब वे चतुर्भुज रूप में जा रहा था, भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए जा रहे थे, तब ये सभी लोगों ने प्रश्न पूछा, प्रभु हम तो मनुष्य रूप धारण किए हैं, मनुष्य हैं, और इस प्रेत के समान ही हम 7 दिन कथा सुने हैं, फिर भी हमें आप लेकर नहीं जा रहे हो और ये आपके साथ जा रहा है। तब भगवान के पार्षद ने यही कहा कि इसने पूर्ण श्रद्धा के साथ और इस कथा का मनन करते हुए यह भागवत कथा सुनी है, इसलिए यह योग्य है धाम में जाने के लिए, आप लोग नहीं। तो कथा सुननी है पूर्ण श्रद्धा के साथ निश्चित रूप से, और 3 व्यक्ति पर श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे पहले जिसकी कथा हो रही है उस भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी बात कि वह कृष्ण की लीला जिस ग्रंथ में लिखी है उस भागवत के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, और तीसरी जो यह भागवत कह रहा है उस पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। इस 3 पर श्रद्धा जब हो जाती है तब उसे श्रद्ध धाना कहा जाता है। ऐसा श्रद्ध धाना व्यक्ति यदि बारंबार कृष्ण अवतार की कथा, भगवान के अवतारों की कथा सुनता रहे तो निश्चित रूप से वे गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि श्रद्धा नहीं है तो उसका लाभ नहीं होगा। हम देखते हैं संसार में कई लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या ऐसा हुआ होगा, हम क्यों विश्वास कर ले, कृष्ण ही भगवान है हम क्यों मान ले, हम कोई आप लोगों की तरह अंधश्रद्धा नहीं रखते। वे मूर्ख दुनिया में हजारों लोगों के ऊपर श्रद्धा रखता होगा परंतु भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखता है। इस संसार में हम देखते हैं इस संसार के लोग, इस संसार में रहने वाले सभी लोग श्रद्धालु हैं परंतु अपनी अपनी श्रद्धा भगवान के ऊपर नहीं रखते हैं, संसार के साधारण लोगों के ऊपर रख देते हैं। और यदि वे श्रद्धा न रखे तो वे जी नहीं सकते। इस संसार में यदि हमारे शरीर से श्रद्धा निकल गई तो व्यक्ति जी नहीं सकता। जैसे मान लीजिए यह जीवन निर्वाह करने के लिए हमें धन कमाना होता है, और धन कमाने के लिए रोज सुबह ट्रेन से हमारी ऑफिस में जाना होता है। अब मान लीजिए ट्रेन में प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं और ट्रेन में चढ़ने जाओ और आपकी श्रद्धा टूट गई कि यह ट्रेन का ड्राइवर आज एक्सीडेंट करके ही रहेगा, एक ट्रेन का ड्राइवर आज एक्सीडेंट करेगा, आपकी श्रद्धा उस पर टूट गई तो क्या ट्रेन में बैठ सकते हो? ये रिक्शा वाला आज एक्सीडेंट कर देगा तो क्या कोई बैठेगा रिक्शा में? अरे ये छोड़ दीजिए, सुबह से उठकर ही हमारी श्रद्धा शुरू हो जाती है। जैसे सुबह उठकर बाथरूम में जाते हैं और ट्यूब ब्रश के ऊपर लगाते हैं, अरे बाप रे, इसमें यदि जहर मिला दिया है तो किसी ने, ये कोलगेट कंपनी वाले ने इसमें जहर मिलाकर दे दिया तो क्या मैं ब्रश कर पाएगा? नहा धोकर दूध पीने लगेगा तो इसमें जहर तो नहीं मिला है। तो हम कोलगेट कंपनी वाले पर भरोसा कर लेते हैं, श्रद्धा रखते हैं, दूध वाले भये के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, ट्रेन चलाने वाले के ऊपर वे मूर्ख श्रद्धा रखते हैं, रिक्शा वाले पर श्रद्धा रखते हैं, परंतु कृष्ण के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते हैं। दुर्भाग्य की बात है, ये केवल दुर्भाग्य है। श्रद्धा, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बात भी बिना श्रद्धा के नहीं हो सकती है, तो भगवान का भजन बिना श्रद्धा के कैसे हो पाएगा? इसलिए नारद मुनि कहते हैं, शब्द धानो यथा कालम उपशांत जनावृत। श्रद्धा के साथ कृष्ण कथा सुननी चाहिए, नहीं तो मेल नहीं पड़ेगा। हमारे भक्त बहुत ही सुंदर कहते हैं, जब लोग कहते हैं क्या कृष्ण खाते हैं, क्या कृष्ण पीते हैं, क्या कृष्ण सोते हैं, तो हमारे भक्त बहुत सुंदर गाते हैं, बुला के तो देखो, लीजिए हम भी गाएंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मेरा जैसे कोई उनको बुलाते नहीं, मेरा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी जैसे उनको तुम खिलाते नहीं, सबरी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं,
कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों जैसे उनको नचाते नहीं, गोपियों जैसे उनको नचाते नहीं, गोपी नाम जपते चलो काम करते चलो,